we find in the very beginning of the Srimad Bhagavatam, the sages in Naimisharanya want to hear from Sutta Goswami how it was that Vyasa came to compile Srimad Bhagavatam.
So, Srimad Bhagavat ke prarambh mein hi hum dekhte hain ki Naimisharanya mein jo rishi jan the, ve ye prashn pooch rahe the ki ye Vyas Dev ne Srimad Bhagavatam ka rachna kiske liye aur kaise kiya.
And this results in the narration about the appearance of Sri Narada.
और उससे उदित होता है नारद जी का जन्म के बारे में जो कहानी.
And Narada Muni, the description is given there how Narada is the son of a maidservant woman, and his mother has been given the opportunity to serve some mendicants who had come to her home.
तो बताते हैं कि नारद जी की वहाँ जो थी घर में परिचर्या सेवा करती थी और उनको ये मौका मिला कि कुछ साधुओं जब साधु जन उधर आए उनका सेवा करने के लिए मौका मिला.
Narada at this time is a young boy, is serving his mother, and his mother is preparing the food, and Narada would bring the food for the mendicants, and he would serve them, and he would also take blessings from them.
तो उनकी माँ जो थी उनके लिए आहार पकाती थी साधुओं के लिए और नारद जी उसे ले आके जब बच्चे थे बालक ले आके उनको परोसते थे.
And Srimad Bhagavatam describes that the sages allowed Narada to take the remnants of their foodstuffs.
तो भागवत में बताया जाता है कि उन ऋषियों ने उनको ये परमिशन दिया कि वे उनके उच्चिष्ट खाएं.
The remnants of the foodstuffs from the great devotees is called Maha Maha Prasad.
भागवतों का जो उच्चिष्ट है उसको महा महा प्रसाद के नाम से पुकारा जाता है.
The food which is offered to the Lord is called Mahaprasad. But when that food is given to the saintly person, to the sadhus, and they leave remnants, then their remnants is Maha Maha Prasad.
भगवान को जो भोग धराते हैं भोग के बाद धराने के बाद उसको महाप्रसाद का नाम दिया जाता है और जब भक्तों से वो भक्तों को खाने के बाद उसे महा महाप्रसाद का नाम दिया जाता है.
Shastra say there are three substances which have very great power. One is the water which washes the feet of the saintly person. One is the dust from the feet of the saintly person. And the third is the remnants of their foodstuff.
So, Bhagavat ka kehna hai ki teen cheezon ka bahut mahatv hai. Ek bhakton ka charan dhuli. Dusra bhakton ka charan dhuli ko जल पाद पाद सेवन करके जो जल है उसका बहुत महत्व है और तीसरा उनका लिया हुआ प्रसाद जो बचा हुआ है वो महा महा प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण है.
So if one has faith in these substances, then one can be blessed with great spiritual advancement.
तो हमें इन पर श्रद्धा होना चाहिए इन 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 तीनों पर यदि होगा तो बहुत प्रगति कर सकते हैं.
Narada, although a young boy, he took the remnants of their foodstuffs with great respect. And after the mendicants left their home, a short time later, his mother was bitten by a snake and died.
तो बहुत श्रद्धा के साथ भागवतों का उच्चिष्ट नारद जी ने ग्रहण किया और ऐसे कुछ दिनों बाद ये साधु लोग चले गए और उसके बाद उनका माता
So although Narada was a young boy and left alone, he remembered the instructions from these saintly persons and he followed their teachings and he renounced the world.
और उन्होंने जो वो साधुओं से जो ग्रहण किया अकेले थे माँ भी नहीं थी पर उस स्थिति में जो उनका बताया हुआ जो उनमें ग्रहण हुआ था उसके अनुसार वे चले और दुनिया त्याग करके भगवान के खोज में लग गए.
He went all over the world visiting different places, seeing the countryside and seeing villages and cities and seeing life in all different forms.
भ्रमण कर रहे थे करते हुए नगर ग्राम सब सब जीवन देख चुके थे वे
but he remained detached from all of these different types of existence
वे उन किसी में से वे बद्ध नहीं हुए मुक्त रहे
and after some time he took the opportunity to sit down in a quiet place and meditate
उसके बाद उन्होंने ये मौका लिया और एक बहुत शांत वातावरण जगह पर जाकर बैठ के ध्यान करने लगे
he had learned from the sadhus how to meditate how to fix the mind on the lord and he followed their teachings
sadhuon se unhone seekh liya ki bhagwan ke sharan mein apna man kaise ekagrachit kare
and the lord appeared to him and he felt very blessed to see the lord but then the lord disappeared from his vision
aur bhagwan unke samne prakat hue par bahut jald hi aprakat ho gaye
now seeing the lord and then losing the lord it was a great disappointment to him he naturally wanted to see the lord again but the lord spoke to him and told him I regret that in this lifetime you will not see me again
तो भगवान को देखा और शीघ्र ही भगवान उनके दर्शन नहीं देना उनको बहुत उससे दर्द महसूस हुआ तो और भगवान ने उनको बताया भी कि अभी इस जन्म में आपको वापस दर्शन नहीं मिलेगा
This did not discourage Narada and he continued to remain saintly person. In course of time he gave up that body and in his next life he was born as the son of Lord Brahma.
So par wo unse us baat se what do you say vichalit nahi hue apne path par drad rahe aur ye sharir tyag karne ke baad agla sharir Brahma ka putra bankar Narad ka sharir
As the son of Lord Brahma, he was imbued with bhakti, with pure devotion for the Lord, and his duty was to teach also this bhakti, the process of bhakti to others.
तो ब्रह्मा का पुत्र होते हुए जन्म से ही उनमें भक्ति का बीज था और उनको ये भी सौंपा गया ये कर्तव्य कि वे सबको जाकर भगवान या भक्ति के बारे में प्रचार करें
सो Narada इज वन ऑफ द 12 महाजन्स वन ऑफ द 12 अथॉरिटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस
तो नारद जी जो है 12 महाजनों में से एक हैं जो भक्ति भक्ति में निपुण हैं
स्वयंभूर Narada Shambhu कुमार कपिलो मनो Pralado, Janako, Bhishmo, Balir, Vyasaki, Vayam. These are the names of the 12 Mahajans.
Swayambhu, Narada, Shambhu, Kumaro, Kapilo, Manohu, Pralado, Janako, Bhishmo, Balir, Vyasaki, Vayam. These are 12 Mahajans ka naam hai is shlok mein.
So Narada Muni, as the son of Lord Brahma, was able to receive transcendental knowledge also from the grace of his father. Lord Brahma.
तो वे नारद मुनि इतने अच्छे गुण होने के कारण वे भगवान का आशीर्वाद के पात्र हुए अपने पिता से भी बहुत ज्ञान ग्रहण किया उन्होंने
We know that Lord Brahma, he had also heard Srimad Bhagavatam from Lord Krishna. The Chatur Shloki Bhagavatam is Krishna speaking to Lord Brahma.
तो ये चतुश्लोकी भागवत करके भागवत में चार श्लोक हैं वो ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त किया
So Narada also took that opportunity to receive knowledge from Brahma.
तो नारद जी ने अपना पिता ब्रह्मा जी से ज्ञान ग्रहण करने का मौका ठीक तरह से उपयोग किया
Narada Muni has many disciples who are very well known people and among them is Srila Vyasadeva
तो नारद मुनि के बहुत शिष्य थे और उनमें से सर्वश्रेष्ठ थे व्यास जी
सो इट्स इंपॉर्टेंट टू हियर अबाउट द लाइफ टाइम ऑफ ब्रह्मा बिकॉज इट रिलेट्स टू द स्पीक टू द लाइफ ऑफ व्यासदेव एंड हाउ व्यासदेव केम टू राइट द श्रीमद् भागवतम
तो इसलिए ब्रह्मा जी का कहानी या कथा सुनना भी मुख्य है क्योंकि उधर से भागवत हमें नारद जी को प्राप्त होता है और उधर से श्रीमद् व्यास जी को आता है.
Without the help of Narada Muni, there would be no Srimad Bhagavatam here in this world.
इस दुनिया में नारद जी का यदि नहीं थे, उनका मदद नहीं था, तो हमें श्रीमद् भागवत नहीं मिलेगा इस दुनिया में.
Because Vyasadev, he had written many scriptures. He had take originally there is one Veda, but Vyasadev divides the one Veda into four. And then he writes the supplements of the Vedas in the form of the Puranas. And then he writes also the fifth Veda, the Mahabharat. And so Vyasadev has written many scriptures.
एक वेद है, उसका व्यास किया, इसलिए वेद व्यास का नाम पड़ा उनको, और उसको आचार विभाजन किया. इसके अलावा वेदों के बारे में उन्होंने बहुत टीका है लिखा, और पांचवा वेद जो बताया जाता है महाभारत भी उन्हीं का कृति है.
So Srimad Bhagavatam describes how Vyasadeva, after compiling all of these literatures, he did not find any satisfaction, he did not get any peace of mind.
So Srimad Bhagavatam hame batata hai ki itna vedon ka vyas karne ke baad aur bahut granthon ka likhne ke baad bhi unko man mein shanti nahi.
And at that time his spiritual master Narada Muni came to him and instructed him in the cause why he was not feeling any peace.
तो उस स्थिति में व्यास जी के सामने नारद उनके गुरु प्रकट हुए और उनका हृदय में दौर्बल्य का कारण क्या था उन्होंने बताया.
Just think, you have written so many books, you have done so much work, but still you didn't find any peace.
तो नारद जी बताते हैं, देखो आपने इतना ग्रंथों का व्यास किया और उतना ग्रंथ आपने रचाया, हाँ, पर इसके बाद भी आपको कुछ शांति नहीं मिला.
So Narada is the guru of Vyas and he has to instruct his disciple. He has to tell him the problem. He has to chastise him and say, you have done wrong. You have encouraged the people in fruitive activities.
तो गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य को डिसिप्लिन दे, उनका गलती बताए. इसलिए नारद जी उनको बताते हैं कि आपने ऐसे बहुत कर्म ज्ञान इसके बारे में सब लिखा, तो इससे क्या क्या मतलब हुआ. लोग बहुत भड़क गए, दे डोंट नो ये फॉलो करना है कर्म की ज्ञान सॉरी रिपोर्ट.
सो व्यासा has encouraged the people to do karmakanda, to do activities which will just for their own material gain. He has not encouraged them in the path of real spiritual advancement.
तो नारद ने बताया कि आपने कर्मकांड का रचना किया और कर्मकांड में सब अपना इंद्रियों का प्रीति, अपना जो भी इच्छाओं का पूर्ति कैसा करना है इसके बारे में बताया, और भगवान को कैसे प्राप्त करना है उसके बारे में बहुत instructions नहीं थे.
You have written the whole Mahabharat, such a big book, but nobody is going to get free of birth and death just by reading Mahabharat.
तो आपने इतना बड़ा महाभारत रचना किया, पर इसके इससे सिर्फ इसे पढ़ने से किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होने वाला है, भगवान प्राप्त नहीं होने वाला है.
Because the Mahabharat does not stress bhakti yoga.
क्योंकि महाभारत में भक्ति योग पर उतना बल
It's only describing so many different karmakandi activities.
अब बहुत कर्मकांड के जो कार्य हैं उसके बारे में बहुत दिया हुआ है महाभारत.
So this, you know, Narada's guru, and the duty of the guru is to chastise the disciple, not to flatter the disciple.
तो गुरु का कर्तव्य ये है कि नहीं बताए अरे इतना अच्छा आदमी है ये किया वो किया, प्रशंसा करने के लिए गुरु नहीं है. Actually, डांटने के लिए गुरु है वो कर्तव्य नारद.
Just like a father has to be strict with his son.
जैसे बाप अपने बेटे से बहुत strict रहना
है. If the father is not strict with the son, then the son will just become spoiled and lazy, and not he will not become he will not develop. He will not try harder.
यदि पिता उनको सही रास्ता ऐसे नहीं दिखाते हैं strict होकर, तो वे फिर बिगड़ जाएंगे, आलसी हो जाएंगे.
So Narad putting some pressure on Vyasa, telling him, you have not done good. You have encouraged the people in all material things.
So नारद जी व्यास जी को बताया, नारद जी ने कि आपने ये उतना अच्छा नहीं किया कि आप सब लोग वैसे दूसरे मार्गों पर बहुत प्रेरित किया आपने.
You have not taught people the real goal of life.
वास्तविक हमारा जीवन का लक्ष्य आपने बताया नहीं.
So then Vyasa understands that he has to write something which will really teach the people the most important thing of life. And this is when he began to write Srimad Bhagavatam.
मनुष्य जन्म का जो गति है वो बताना चाहिए मुझे, ये श्रीमद् व्यास जी ने समझा. और इस समझ के साथ उन्होंने जो ग्रंथ का रचना किया वो है श्रीमद् भागवत.
So the Srimad Bhagavatam is Vyasa's contribution in his maturity.
इसलिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि व्यास जी का ये योगदान है, पर योगदान उनके परिपक्व होने के बाद किया हुआ ग्रंथ है. थैंक यू.
श्रीमद् भागवतम इज डिस्क्राइब Nigama kaupataror galitam palam shuka mukad amrita drava samyatam pibata bhagavatam rasamalayam mahuroho rashika bhuvi babukaha. The Srimad Bhagavatam is the ripened fruit of all of the Vedic literature. The Vedas are like a tree and the Srimad Bhagavatam is the fruit of the tree.
तो वेदों को एक वृक्ष के साथ तुलना किया जाता है और उस वृक्ष का फल और सभी फलों में से सबसे पक्व परिपक्व हुआ फल को श्रीमद् भागवत के साथ तुलना किया जाता है.
जस्ट लाइक यू हैव द मैंगो ट्री यू नो वी डोंट थिंक मच ऑफ इट अंटिल देयर सम फ्रूट. व्हेन देयर सम फ्रूट ऑन द ट्री देन वी टेक अ लॉट ऑफ केयर, वी वैल्यू दिस बिकॉज़ द फ्रूट इज वैल्यूएबल.
आम का पेड़ है, साधारण तरह से कोई ऐसे वृक्ष के लिए कुछ स्पेशलिटी नहीं देता है, पर उसमें आम का सीजन जब आ जाता है तब सब लोग आम पे रहता है सब लोग का.
So this is a relationship between Vedas and Bhagavatam. Veda are like the tree and the Bhagavatam is the fruit. It's the valuable part.
तो इस उदाहरण से हम समझते हैं कि जो फल है वो सबसे मुख्य अंग है वृक्ष का. इसी तरह यही तुलना किया जाता है भागवत और वेदों से. तो वेद में सबसे मुख्य अंग है श्रीमद् भागवत.
And we have to thank Narada Muni for his help, for his contribution and his instruction to Vyas, because it was Narada Muni who inspired Vyas to give this Srimad Bhagavatam.
तो हम सब नारद मुनि के आभारी हैं क्योंकि उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का रचना किया.
Now Narada Muni, actually in another place in Srimad Bhagavatam, we also learn about Narada's earlier life before he was the son of a maid servant woman.
भागवत में ही दूसरे जगह से हमें मालूम पड़ता है नारद जी का इसके पिछले जन्म का क्या कहानी है.
That in his earlier life he was a Gandharva. And he was very handsome and he had a wonderful voice. He was a beautiful singer and he was often associating with many young beautiful women.
तो इसके पिछले जन्म में वे एक गंधर्व थे, बहुत अच्छे दिखते थे, बहुत सुंदर गाते थे, और इन गुणों के कारण उनके आसपास में स्त्री लोग बहुत थे.
Because of his good looks and good voice, he was very proud. He was full of his own pride, and this caused him to commit some offense against the superiors in the heavenly planet.
तो अपने good looks और अपने सौंदर्य, अपने मधुर वाणी या मधुर आवाज के पर पे बहुत घमंडी हो गए उसके कारण. और उनके बड़े जो थे इंद्रलोक में उनसे कुछ ठीक व्यवहार नहीं किया.
So it describes that on one occasion he was traveling with some young women in an aeroplane going to a function in the heavenly planets, and he began to chant the names of the demigods rather than the name of the Supreme Lord.
So ek bar wo ek airplane mein ja rahe the dusre bahut gandhar striyon ke sath, to tab wo ga rahe the bhagwan ke bare mein gaane ke alawa ve dusre indra chandra aise dusre upadevta jo the unke bare mein gaana shuru kiya.
When the Prajapatis in the heavenly planet saw him behaving in this way, they understood his pride and they cursed him that he should take a low birth as the son of a Sudra lady, and in this way he would be corrected for his pride.
Jab Prajapatiyon ne dekha ki isne aise, you know, striyon ke sampark se usko dimag mein ye baat chad gayi ki wo bahut bada gayak hai, इसलिए जो भी मन में आए गाना शुरू किया, इसलिए उन्होंने उसको शाप दिया कि तुम भूलोक में जाओ और एक शूद्र स्त्री के यहाँ जन्म ले लो।
So this resulted in his birth as the son of a Sudra woman, but he was not forgotten. He was fortunate that he was able to get the association of some saintly persons.
तो उनका ये अच्छा संस्कार के कारण उनको साधुओं के साथ उस जन्म में भी संपर्क करने के लिए मौका मिला।
And he took advantage of their association, and the result was in his next life he was able to be the son of Lord Brahma and have an eternal body which could travel throughout the material and spiritual world.
मौका मिला, हमें भी मिलता है, पर उन्होंने उस मौका का फायदा उठाया और उनका संगत किया, इसलिए अगला जन्म उनको ब्रह्मा का पुत्र बनने का मौका मिला और बिना वीसा का जिधर भी जाना है वे भ्रमण कर सकते थे।
Narada, wherever he goes, he always carries his veena and he is playing his veena and chanting the holy names of the Lord.
तो नारद जिधर भी जाते हैं अपना वीना के साथ जाते हैं और वीना बजाते हुए भगवान का नाम गाते हुए जाते हैं जिधर भी जाना है।
So Narada likes to go and preach wherever he goes. Narada, his name means one who is giving God to others.
Narada, शब्द का मतलब ही है जो व्यक्ति भगवान दूसरों को भगवान देता है या भगवान का भक्ति प्रदान करता है।
So we have some of the different preaching activities are described in Srimad Bhagavatam. It's mentioned about Daksha, who was one of the Prajapatis, also one of the sons of Brahma. And he is responsible for procreating the universe, and he had many sons.
So Bhagavat mein Daksha Prajapati ka kahani aata hai, unka kartavya tha, Brahma ji ka instruction tha unko ki aadesh tha ki aap praja utpann kare.
So Daksha, after having producing many sons, he asked his sons, first of all, go and do some austerity, and after you finish the austerity, when you come back, I will arrange for your marriage, and you can help me to procreate the universe.
तो दक्ष ने बहुत पुत्रों का उत्पन्न किया और करने के बाद उनको ये आदेश दिया कि पहले आप लोग जाओ तपस्या करो, तपस्या करने के बाद वापस आओ, आपके लिए गृहस्थी के लिए सब प्रदान करता हूँ।
So the sons of Daksha went to the remote area, went to some mountain place, and there they did austerities. But Narada Muni happened to see them there and saw that they were doing very nice tapasya. And he thought, they're such nice young men, it would be a shame for them to enter family life.
तो वे लोग एक बहुत शांत स्थल में जाकर तपस्या करना शुरू किया। नारद जी उनसे मिले और उनको भगवान के बारे में बताना शुरू किया।
So Narada's a brahmachari, you know, naistika brahmachari. He never marries. So he naturally thinks others should be like him.
नारद जी नैष्टिक ब्रह्मचारी थे, इसलिए उनसे जो लोग संपर्क करते हैं और उनका भी ये इच्छा था कि दूसरे भी ऐसे नैष्टिक ब्रह्मचारी रहे।
You know, those who are married, they always think others should also get married. And those who are not married, they think, you know, yeah, better not to get married. You know, we always think our own position is the best.
तो जैसे शादी जिन्होंने किया है, वे समझते हैं कि दूसरों को भी शादी करना है, वही सबसे भला है उनके लिए। और कभी कभी लोग जो ब्रह्मचारी हैं, वे समझते हैं कि दूसरों को भी ब्रह्मचारी रहना है।
So Narada preached to these sons of Daksha and he told them, don't go back to your father. You go home, you're finished. Your father will get you tied up in material life. So he said, just simply stay and do tapasya and be sannyasis. Yeah.
नारद जी ने जब उनसे बात किया तो उन्होंने बताया यदि आप घर वापस जाएंगे ऑलरेडी पिताजी लड़के उड़की देख चुके हैं बस जाएंगे, जाइए मत, इधर ही रह के तपस्या तपस्या कीजिए और संन्यास संन्यास ले लीजिए।
So Daksha, when he saw that his sons were not coming back and he heard that Narada Muni had preached to them and they'd all become sannyasis, then Daksha was very angry.
तो जब दक्ष जी को ये न्यूज मिला कि उनके पुत्र अभी वापस आने वाले नहीं है तो वे बहुत क्रोधित हो गए।
And so Daksha had more sons. And again he told them, first of all, before your marriage, you do some austerity, purify your existence, and when you come back, we will arrange for your marriage.
तो उन्होंने वापस और पुत्र उत्पन्न किया और उनको भी यही आदेश दिया, पहले जाओ तपस्या करो, वापस आओ, फिर गृहस्थी।
But again Narada preached to them, and again the same thing happened, and they renounced the world, they didn't go home.
तो नारद जी वापस आ गए उनके पास और बस वे तपस्या करते बैठ गए उधर संन्यास बनकर।
And so the result was that Daksha cursed Narad, and the curse was that this Narada Muni, he will not be able to remain in one place for any more than a short time.
तो दक्ष ने उनको एक शाप दिया, उन्होंने बताया कि नारद जो है इसको एक जगह पर कुछ थोड़ा समय के ऊपर रह नहीं सकते, इसे शाप दे दिया।
So Narada Muni, actually this was a benediction for him. Although it seems like a curse, it was a blessing.
वास्तविक रूप से ये शाप है, पर यू नो व्हाट इज ए वरदान, वास्तविक रूप से वो वरदान बन गया हमारे लिए भी और उनके लिए भी।
Prabhupada also said, he said, just like Narada Muni, he said, I have been cursed in the same way.
तो श्री प्रभुपाद ने भी बताया कि नारद मुनि को ये जो शाप मिला इसी तरह मुझे भी यही इसी तरह का शाप मिला हुआ है।
He said, I have many places, many homes to stay, many people that are always inviting me, come and stay, but I cannot remain in any one place.
आप तो बहुत हमारे हरे कृष्णा सेंटर्स हैं और भक्त लोग भी बुलाते हैं, आइए हमारे साथ रहिए, पर मैं एक जगह पर तो रह नहीं सकता।
It is just like the story about Gopal Bhan. There is a one amusing person called Gopal Bhan. So, there's a story that he had a new house and somebody wanted to give Gopal Bhan some trouble. He understood this new house is not yet used. They haven't done the Griha Pravesh yet. They haven't done the rituals for living in it. So before that time, you're not supposed to use the toilet.
Gopal Bhan karke ek bahut Krishnanagar ke bahut thodi se chesta कोर्ट जेस्टर थे और उनका एक कहानी है, उन्होंने एक घर बनाया, बस गृहस्थ गृह प्रवेश करने के पहले घर का किसी तरह भी उपयोग नहीं करना चाहिए।
सो दिस वन पर्सन वांटेड टू गिव गोपाल सम ट्रबल, ही केम टू देयर होम एंड सेड, ओह आई नीड टू यूज योर बाथरूम, आई हैव अ कॉल ऑफ नेचर, प्लीज लेट मी यूज योर बाथरूम।
तो इस व्यक्ति गोपाल बांड के जो घर था गृह प्रवेश के पहले उनके घर में आ गए, ये अपशकुन माना जाता है घर का प्रयोग, तो उन्होंने बोला मुझे टॉयलेट जाना है इसलिए कृपया कुछ प्रबंध कीजिए मेरे लिए।
सो गोपाल व्हाट टू डू, ही हैज गॉट दिस न्यू हाउस एंड नोबडी इज सपोज्ड टू यूज द टॉयलेट बट ही कैन रिफ्यूज द पर्सन।
हाँ, नया घर है, किसी को ऐसे उपयोग नहीं करना है घर का कुछ कुछ भी व्यवस्था, पर वो आदमी को कुछ बता भी नहीं सकते।
So he tells him, "All right, you can pass stool, but you cannot pass one drop of urine."
How do I translate that? If you don't understand, we'll discuss that in private. Somebody.
They said, "If you pass one drop of urine, I will kill you."
तो आप, you know, toilet. योग कर सकते हैं पर एक पिछाप नहीं करना चाहिए आपको थोड़ा भी।
So it's like this, you see, Prabhupada said like this, you see Narada, he has a home, he has many places, but he cannot stay any one place.
तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी बता दें कि बहुत घर है, रहने के लिए बहुत जगह है, पर वे एक जगह पर भी रह नहीं सकते।
But so this is a blessing for Narad that he cannot become attached to any one place.
So Narad ji ke liye bahut vardan tha kyunki wo kuch bhi jagah par badh nahi ho jate the ek jagah.
What is the curse of the materialist is a blessing for the sadhu.
Jo laukik sthiti mein kisi ko shap hai wo apne alaukik sthiti mein dekhe to wo
So we see Narad as a powerful preacher. He could convince people to get out from the well of material life.
So Narad ji jo the bahut prachar karte the aur log ko laukik sthiti se upar uthne ke liye bahut instructions dete the.
You can see if a person is a good powerful preacher, then he will help others also to become devotee and to give up material life.
एक व्यक्ति यदि अच्छे प्रचारक हैं तो दूसरों को भी इसी तरह इस दुनिया से और दुनिया की चीजों से बद्ध नहीं होना और उससे मुक्त होने का रास्ता बताते थे.
Narad is also guru of Dhruva Maharaj.
Narad ji Dhruv Maharaj ke भी गुरु थे.
Dhruva Maharaj was a young boy who went out of home to find God.
Dhruv बहुत कम उम्र में भगवान ढूंढने के लिए घर से निकल गए.
And while he was in the forest, Narada came to him and told him, Narad tested him and said, "You're only a young boy, better you go home."
तो जब वन में थे नारद जी उधर आए पहले उनको उनको कुछ शब्द बोला परीक्षा करने के लिए तो उन्होंने बोला आप तो इतने छोटे बालक हैं आप क्या तपस्या करें.
He said, there are many dangers here in the forest. There's many wild animals. You should go back to your mother.
इधर बहुत दूसरे प्राणी हैं जो आपको खा जाएंगे इसलिए वापस घर चले जाइए.
So like this, Guru has to test the disciple, and you see Narada testing Dhruva Maharaj.
तो इसलिए गुरु का कर्तव्य बनता है वो कि वो अपना शिष्य का परीक्षा करे और इस तरह नारद जी ने भी किया.
So then Narad saw that Dhruva is very determined. So he gave him instruction and he gave him the mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
To Narad ji ne dekha ki Dhruv jo the bahut teevr the drad the isliye unhone mantra ka pradan kiya Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
So with the blessings of Narada in 6 months Dhruva Maharaj was able to see God.
Narad ji ke varg ke karan Narad ji ke jo instructions the uske karan ve 6 hi mahino mein bhagwan dekhne mein samarth.
Prahlad is also a disciple of Narad. Prahlad had the opportunity of hearing from Narada Muni while Prahlad was still within the womb of his mother.
Prahlad bhi jo the Narad ji ke shishya the unko ye saubhagya prapt hua ki wo maa ke garbh mein ho jab the usi samay Narad ji se bhagwan ke bare mein sunne ke liye mila.
Hiranyakashipu's wife was pregnant and her husband Hiranyakashipu had gone off to do austerities. At that time the demigods thought, "We will capture his wife, and when she gives birth to the child we will kill this child."
Prahlad jab maa ke garbh mein the tab Hiranyakashipu tapasya karne ke liye chale gaye. Indra aur adi devtaon ne samjha ki ye inko le jayenge hum log जब बच्चा पैदा होगा उसको मार देंगे.
They were thinking if Hiranyakashipu is such a big demon, he's giving us so much trouble, that his son will also be a big demon. We have to kill him as soon as he's born. If we allow him to grow up, he'll give us too much trouble.
Hiranyakashipu हमें इतना कठिनाई और इतना मुश्किल देता है, इतना बदमाश है, तो उसका बेटा उससे बढ़कर होगा, इसलिए पहले ही खत्म कर दें.
But Narada Muni, he's a great sage, he knows the future, and he came and told them that don't even try. He said, "You will never be able to kill this child, because this child is not an ordinary child. This child is going to be a great devotee."
Narad Muni ko ye malum tha apne divya drishti se ki ye Prahlad kaun hai, isliye unhone bata diya devtaon ko ki ye prayas socho bhi mat ki aap ye bacche ko kuch kar sakte hain.
So Narad took the wife of Hiranyakashipu and he took her to his ashram and he spoke all the knowledge of the scriptures. Now the wife, she was, you know, she's a woman and she was pregnant, so she did not listen very carefully. But the child in the womb, he was listening very carefully.
तो नारद जी इन्हें अपने साथ ले गए आश्रम में देखभाल कर रहे थे उनके और उनको बहुत भगवान के बारे में बहुत बताया माँ जो थी प्रहलाद की शायद उन्होंने उतना नारद जी ने जो बताया ठीक से ग्रहण नहीं किया पर कुक के अंदर जो बच्चा था प्रहलाद उन्होंने ठीक तरह से सब कुछ ग्रहण किया
And the result is after this child is born, you know, throughout his, as a child, from his very childhood, he's constantly absorbed in thought of Vishnu.
तो इसका प्रभाव ये था कि जन्म जब लिया उन्होंने पैदा होते ही तब से भगवान के बारे में सतत स्मरण और श्रवण करते हुए थे.
So these are some of the great disciples of Narad. Another disciple of Narad is the great king Priyavrat. Priyavrat, who is one of the sons of Swayambhuva Manu, Uttanapad, one of the sons of Uttanapad.
तो एक और राजा थे प्रियव्रत जो उत्तानपाद के पुत्र थे ये भी नारद जी के एक और शिष्य थे.
So Priyavrat, he was doing austerities in the mountain. He'd gone off to do austerities, and there he had been associating with Narada Muni.
तो प्रियव्रत जो थे बहुत उन्होंने तपस्या किया.
Now, after some time, the father of Uttanapad, Swayambhuva Manu, wanted to retire. He wanted to take vanaprastha and renounce, and he needed someone to take the position of his throne. So he came to ask his son Priyavrata to come back.
So Swayambhuva Manu ne apna putra ko vapas. वे चाहते थे कि वे वानप्रस्थ ले ले और चले जाए तो इनका विनती ये था कि उनका पुत्र उनका जो भी रिस्पांसिबिलिटीज थे वो ले ले उनसे.
You know, sometimes you get this position even today. Some young man wants to become devotee, he comes to the temple and the guru wants to keep him, but the father comes, I want my son back. And the guru is pulling one arm and the father is pulling the other arm, you know, they're saying, the father is saying he's mine, guru says, no, he's with me now, you know.
So, ye aaj bhi hum dekhte hain mandir mein sab bahut kuch log aa jaate hain students ye sab aur ve bhakton ke sath sampark karte hue unka ichcha hai ki hum bhi full time bhagwan ki seva mein lag jaye par kuch din baad unke pita ya mata aa jaate hain aur unko wapas घर ले जाने के लिए इधर गुरु एक हाथ पकड़ते हुए उधर माता पिता दूसरा हाथ पकड़ते हुए खींचते हैं हमको.
So there's Narada Muni trying holding on to Priyavrata and Swayambhuva Manu saying no he has to come home he has to go home.
तो नारद मुनि एक हाथ और स्वयंभू मनु दूसरे हाथ पकड़े हुए खड़े हैं उधर.
So then Lord Brahma had to come. Lord Brahma came on his swan carrier and Lord Brahma he came and he settled the argument.
तो तब ब्रह्मा जी हंस वाहन में आए और उधर समाधान करने के लिए.
And Lord Brahma decided that Priyavrata should go home. He should go back because he will not lose the benefit of his devotional service.
तो तब ब्रह्मा जी ने बताया कि प्रियव्रत को वापस अपना पिता का बताया हुआ responsibilities जाकर लेना है क्योंकि उन्होंने जो भक्ति अभी तक की जो भक्ति और तपस्या किया उसका तो फल उनका कभी व्यर्थ नहीं होगा.
So Narada Muni had to accept the decision of Lord Brahma and Priyavrata went back to become the ruler and Swayambhuva Manu could take Vanapras.
तो ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी का जो आदेश था वो तो पालना पड़ा उनको सभी को.
So
वापस गए देखभाल करने के लिए पिता का रिस्पांसिबिलिटी.
So we see something of the life of Narada Muni. How he is making devotees everywhere and he's encouraging people in their Krishna consciousness.
तो हमें देखना चाहिए कि वे कैसे इतनी सुंदर तरह से प्रचार कर रहे थे सब लोग को भगवान के बारे में बता रहे थे.
Of course Narada enjoys a very dear relationship with Lord Krishna.
इसके अलावा नारद जी को बहुत संबंध गहरा संबंध था भगवान के साथ बहुत बड़े पार्षद थे भगवान.
And he plays an important part in Krishna's pastimes. He's always going helping to accelerate, to speed up the pastimes of Lord Krishna.
तो वे भगवान के लीलाओं में बहुत गहरा संबंध था उनका और भगवान को का लीलाओं को to facilitate, what you say? जी मदद लीलाओं में मदद करने के लिए आ जाते थे सदैव.
Just like when Krishna is born as the son of Vasudeva and Devaki, it's Narad who goes to Kamsa and tells him that you've been cheated, this child has already been born.
तो जब भगवान का जन्म होता है इसके बाद नारद जी थे वो व्यक्ति जो जाकर कंस को बताते हैं कि तुमको मारने वाला ऑलरेडी आ गया और आप तो ऐसे आपको क्या बोलते हैं पागल बनाए.
Narad, he wants to see that the mission of Lord Krishna will happen, that will take place, and he has to go and he has to agitate the mind of Kamsa so to make him very angry that he will do all the bad things.
तो भगवान का अवतार का कारण नारद जानते थे इसलिए उनको मालूम था कि कंस को यदि वो चाबी दे दें तो काम शुरू हो जाएगा.
Narada tells Kamsa, you know, you have to, don't be sentimental, don't give in. You should kill all these children of Vasudeva and Devaki.
तो नारद जी जाके बताते हैं कि ऐसे नहीं है कि आपको आठवां कौन सा कैसे मालूम है इसलिए सबका सब खत्म कर दो.
Because these, Narad knows these are actually demigods who have been cursed, and he, by Kamsa killing them, they get free of the curse and they can go back to heaven.
क्योंकि नारद को मालूम था कि ये तो सुर थे और उनको यदि ये जल्दी खत्म करता तो वापस मुक्त होकर वापस चले जाते.
So Narada Muni always, he enjoys so much the pastimes of the Lord. He gives pleasure to Lord Krishna. The Lord gives.
को बहुत आह्लादित करते थे क्योंकि ये भगवान के लीलाओं में बहुत मदद करते थे.
Where Lord Krishna says that Naham tishtani vaikunte yoginam ridayeshuva tatra tishtani Narada yatra gayanti madbhakta. Krishna is saying, I am not in the Vaikuntha. I am not in the hearts of the yogis meditating on me. I am wherever my devotee like Narada is chanting my holy name.
So Bhagavan Narad ji ko batate hain ki main Vaikunth mein nahi hu, yogiyon ke hriday mein nahi hu, par main udhar khada hu jidhar mere bhakt mera bhajan Narad ji ke jaise karte hain.
So Krishna is in the heart of the devotees and devotees like Narada are in Krishna's heart.
भगवान जो हैं सब भक्तों के हृदय में है ही, पर नारद जैसे कुछ चुने हुए भक्त जो हैं, वे भगवान के हृदय में सदैव हैं.
So Narada Muni, he also comes to Vrindavan and he also gets a chance to also see Krishna's Rasa Lila. He's such a great devotee.
नारद जी वृंदावन में भी थे और भगवान का रास लीला के समय भी रास लीला को दर्शन किया उन्होंने रास लीला का.
And he's constantly traveling and preaching the glories of the Lord.
सदैव भ्रमण करते हुए भगवान का प्रचार करते थे.
And this way he's very dear to Lord Krishna. Krishna says, Bhagavad Gita, Nachatasman manushyeshu kaschin me priyakritama. There is no one more dear to me than the one who is preaching my glories.
भगवान गीता में बताते हैं कि जो मेरे बारे में और मेरा कहा हुआ शब्दों के बारे में दूसरों को बताते हैं वो मेरे सबसे प्रिय हैं, इसलिए नारद जी भगवान के सबसे प्रिय हैं.
So Narada is also teaching us the process of devotional service, the process of worshipping the Lord.
तो हमें भक्ति करना और भगवान का अर्चन पूजन करना भी सिखाते हैं हमें नारद.
Narada, as a devotee of the Lord, he's not only chanting the holy name of the Lord, he's preaching the glories of the Lord and he's worshipping the Lord also.
Na sirf Bhagwan ka naam kirtan karte hain aur Bhagwan ka archan pujan bhi karte hain aur dusron ko sikhate bhi hain.
So he's showing all of us how to practice this bhakti yoga.
Bhakti yog ka hamara vyavahar mein kaise lana hai wo Narad ji hame batate hain.
And we have to learn from Narad how to, we have to follow in the footsteps of these great devotees.
तो हमें नारद जी से समझना है और नारद जी जैसे महान भक्तों के पथ पर हमें उनके पीछे पीछे
So Narad Muni also comes in the Chaitanya Lila as Srivas Thakur to take part in the pastimes of Lord Chaitanya.
So Srivas Thakur bankar aate hain Chaitanya Mahaprabhu ke lila mein bhag lene ke liye.
Srivas Thakur's home was the place for the inauguration of the kirtan, the chanting, the sankirtan movement.
So Srivas Angam jo tha udhar se Bhagwan ne ye sankirtan andolan Bhagwan Sri Chaitanya Mahaprabhu ne shuru kiya.
As Srivas Thakur, he was playing a very important part in the pastimes of Lord Chaitanya. It was there that the devotees would gather every night to hold the kirtan.
जैसे भगवान के लीलाओं में बहुत मुख्य अंग लेते थे नारद, इसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में मुख्य अंग श्रीवास ठाकुर लेते थे और उनके आंगन घर में हर दिन हर रात को कीर्तन चलता था.
So Narada Muni is something more, he's more of a Vaikuntha man than a Brajbasi. And he appreciates more the opulence of the Lord.
Narada Muni ka bhav hai ki ve zyadatar Vaikunthvasi hain, Bhagwan ke aishwarya ko bahut pradhanya dete hain, na ki jaise Vrindavanvasi.
So at the time of Rathi Atra, you see the goddess of fortune come with her servants and they arrest all, arrest the Lord and his followers who have gone off to Vrindavan.
Aur Rathi Atra ke samay hum dekhte hain ki Lakshmi ji ka jo parshad hai ve aakar Jagannath ji aur Jagannath ko Bhagwan ke jo followers hain parshad hain unko arrest kar lete hain, unka kabza kar lete.
So when Srivas Thakur saw this, he thought, this is wonderful. Just look at the opulence of Mother, of the Goddess of Fortune, Mother Lakshmi. She is so opulent. She is so powerful.
So, Acharya batate humko ki kitna saubhagya hai unko ki ve Bhagwan ko is tarah bandh kar sakte the.
So it was at that time Swarup Damodar, who is one of the intimate associates of Lord Chaitanya, he had to describe to Srivas Thakur the opulence of Vrindavan. And he explained that although Mother Lakshmi, the goddess of fortune, has opulence, but this is only a fraction of the opulence of Vrindavan.
Lakshmi ji ko bahut aishwarya hai, par wo to ek chota ang hai jo jitna aishwarya Vrindavan, Bhagwan ke Vrindavan leela mein hai.
Because in Vrindavan, every tree is a desire tree, and every cow is a Kamadenu cow, and every speck of dust is Chintamani.
Kyunki Vrindavan mein har vriksh kalpataru hai, har gai Kamadenu hai, aur har dhuli jo hai Vrindavan mein wo
so in this way Swarup Damodar was helping Srivas Thakur to appreciate the glories of the Supreme Abode, Vrindavan Dham.
So Swarup Damodar ji Srivas Thakur ko ye bata rahe the ki Vrindavan Dham ka mahima kya hai, wo bata rahe the.
So this is something of the, you know, Narada Muni's pastime, Leela with the Lord. Narada. Any questions? I don't know.
Hare Krishna. Ye jo Maharaj, this I have a short thing. Ye jo Maharaj ne jo abhi lecture diya, aise to ye to pura Bhagavat se jo bhi Narad ka leela hai, wo sab चुन चुन कर उधर जाके ले आकर हमें बताया. ये बहुत आसान चीज नहीं है, बहुत सालों का अपना प्रतिदिन का पढ़ाई, आप बैठकर भागवत का ग्रंथ श्रवण करना, उसका मनन करना और अपने प्रतिदिन का साधना, ये सब करके उनको जो प्रभुपाद जी के आशीर्वाद के कारण ये सब हमें ये दे पाते हैं, इसलिए हमें बहुत हम Resting the Lord.
Yeah.
At the Rath Yatra. Just go on that. Right.
Yeah, because the Lord has gone off to Vrindavan, right? He's gone off to Gundicha. He's left Jagannath Puri, and he's goes, you know, the deities, they go down to Gundicha. So this is Vrindavan, you see. They've left the goddess of fortune in Puri, in Purushottam Kshetra. And they've gone down to Gundicha.
So Rath Yatra ke jo leela hai uske bare mein pooch rahe hain prashna ki ye Lakshmi ji aur unke parishad ne bhagwan ko kyon ka kabza kyon kiya. To baat ye hai ki bhagwan jab Rath Yatra mein jate hain Gundicha mandir jo hai Vrindavan bana jata hai to bhagwan ne Lakshmi ji ko chhod ke aur ye bataya jata hai ki Lakshmi ji ko bataya bhi nahi aise bhag gaye bhai aur behan ke sath chhod ke bhag gaye. तो जब वापस जब आते हैं तो लक्ष्मी जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं
सो लक्ष्मी सेंड्स हर सोल्जर्स टू गो एंड अरेस्ट देम एंड दे हैव टू कम बैक एंड दे हैव टू बाउ डाउन दे हैव टू बाउ डाउन बिफोर मदर लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून सबमिट देमसेल्फ
तो वे अपने पार्षद को भेजते हैं कि सब लोगों को पकड़ के ले आओ वापस
एंड इन दिस वे शी दे कम बैक अगेन टू पुरुषोत्तम क्षेत्र
वापिस पुरुषोत्तम क्षेत्र भगवान के जो जगन्नाथ क्षेत्र में मंदिर है उधर वापिस लेके आते हैं
सो दिस इज द रथ यात्रा लीला द लॉर्ड गोइंग टू गुंडीचा इज गुंडीचा रिप्रेजेंट्स वृंदावन एंड द लॉर्ड इज लीविंग द्वारका और ही इज लीविंग यू नो हिज होम टू गो देयर टू गो बैक टू वृंदावन And then Lakshmi is just bringing them back.
So, Bhagwan Dwarka chhodkar Vrindavan jaate hain aur Lakshmi unko wapas le aati hai. Kuch aur prashna? Question is whether it is wasn't it an offense that he went and told Kamsa that he kill all of these people? But Maharaj ne wo explain kiya vastavik roop se.
Leela karne ke liye hai. Theek hai.
Okay. I'll leave Maharaj to.
Well, Narada is Narada's service to make sure all of these pastimes take place. You see, he has to excel. He's like the catalyst. He has to speed everything up so that it will happen.
So, भगवान को लीलाओं को जल्दी होने के लिए जो भी प्रबंध करना है वो सब नारद करते थे.
So Kamsa sends his men to go and kill all the young children who've taken birth.
तो कंस ने भेजा सब लोग को अपने आदमियों को कि जो भी बच्चे हैं उनको जाके मार दो.
And the acharyas explain that what happens is that Kamsa's men they go and kill all the children of the demons. They don't kill the children of any devotees.
Oh my God!
So acharya बताते हैं हमें कि कंस के लोग जो हैं जाके सब असुरों के अपने कुल के भी सब लोग को मार देते हैं. हाँ भक्तों के नहीं भक्तों के बच्चों को नहीं.
It's all the all the different demons and their children who get killed, not the children of the devotees. The children of the devotees, you know, see Krishna and his, you know, they're not able to enter into the Vrindavan where Krishna is. They just go in the around Mathura and where all the demons are.
तो वे वास्तविक रूप से वो लोग वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, दूसरे सब जिधर असुर कुल जिधर थे उधर ही वे जाकर बच्चों को मार दिया उन्होंने।
So you see Narada doing, you know, he's doing nice service actually by encouraging counsel.
So अपराध नहीं है, वास्तविक रूप से बहुत अच्छा सेवा है कि भगवान की लीला।
And similarly with the killing of the sons of Vasudeva and Devaki, the six children who were killed by Kamsa, see these were all demigods who were cursed to be put in the womb of Vasudeva and Devaki.
So pratham che bacche jo the Vasudeva Devaki ke ve to vastavik roop se devta unte devta the jo unke garbh mein jinhone janam liya.
So Kamsa coming killing them, it means these demigods can go back to their heavenly planets, back to their service.
तो कंसा यदि जब आकर उन्हें उसने मारा तो वे वापस अपने स्वधाम जाने के लिए उनको मौका मिल गया।
Just like Maharaj Santanu and Satyavati, right? Well, before he married Satyavati, first what he was with the Ganga, right? Yeah.
जैसे हमारा चंतनु और गंगा के बच्चों का स्थिति था।
So you know, Maharaj Santanu was conceiving many children one after another, but his wife was running and throwing them in the Ganga.
हाँ, तो हमारा चंतनु के बहुत बच्चे पैदा हुए उनके, और गंगा हर एक पुत्र पैदा बच्चा पैदा होते ही उनको गंगा में फेंक देती।
These were all demigods who had been cursed, and you know she was throwing them in the Ganga so that they could go back to the heavenly planets, back to their position.
तो ये सुरकुल के थे, इसलिए उनको गंगा में फेंक देती थी, so उससे उनको वापस अपना जो प्रथम स्थिति था वो प्राप्त होने के लिए मौका मिले, इसलिए करती थी वो।
But then finally, you know, the last child, Bhishma, you know, Maharaj Santanu couldn't stand it anymore, and he stopped her. You know, so then she left, and he was left with this one child.
तो आखिर बच्चा जब वो फेंकने वाली थी तब उन्होंने प्रश्न पूछा और उसलिए और वही जो थे वे भीष्म बन गए।
So when we see, although we see something, it looks like something very bad. You know, we think by moral standards this is very bad, but there's some higher reason, higher purpose behind.
तो हमारे दृष्टिकोण में कुछ ऐसे चीज गलत दिख सकते हैं पर उसके लिए सब उससे बड़ा वास्तविक कारण कुछ और है।
So we cannot understand the activities of these great devotees, you see.
तो मैं महाराज बताते हैं कि ऐसे बड़े बड़े भक्तों का जो लीला है उनके जो कार्य हैं वे हम वापस सीधा सीधा समझ नहीं पाते हैं, नहीं पाएंगे।
You know, we are conditioned souls. We have, you know, we only see things in a material way. We don't see, but these great souls, you know, they understand the higher purpose behind things.
हम भक्त जीव हैं, हमारे लौकिक स्थिति में हमारा दिमाग और मस्तिष्क जो है उसी तरह सोचता है, वही समझता है, पर वे जो हैं सदैव भगवान का स्मरण करते हैं, इसलिए उन्हें वास्तविक चीज क्या है और उससे ऊपर वाला जो पर्पस है, एक्चुअल पर्पस है, वे समझते हैं।
He's always victim in Ashen Narsingh Maharaj. Ki jai.
Shri Prabhupada.
Eko?
Jai Radha Bali.
Again or small Muhammad.
Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna. Yeah.